प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
एक बार मसीह मुझे को जरा दिल में जगा दे दे, एक बार मसीह मुझे को जरा दिल में जगा दे। भटके हुए राही को सही राह दिखा दे, एक बार मसीह मुझे को जरा दिल में जगा दे। समंदर में मैं डूबा हूँ मसीहा, पापों के समंदर में मैं डूबा हूँ मसीहा, नजरों से गिराना मुझे हाथों से उठा ले, नजरों से गिराना मुझे हाथों से उठा ले। भटके हुए राही को सही राह दिखा दे, एक बार मसीह मुझे को जरा दिल में जगा दे।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवारों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक और उसके आखिरी पुस्तक मलाकी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्याय 2 और उसके 10 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का, सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम मलाकी नबी की पुस्तक से मनन चिंतन करते हैं, एक साथ मिल बैठ करके आपके वचनों को सुनते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए उनके जीवन से बोले और बातचीत करने पाए, हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से उन्हें छुटकारा देने पाए, उनके जीवन में शांति और आनंद देने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। विनती है पिताजी, आप उन पर भी दया दृष्टि करें, उनके जीवन को स्पर्श करें, ताकि वे इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। आज का वचन उनके जीवन में आशीष का कारण ठहरे। आप हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक और उसकी अंतिम पुस्तक है मलाकी, इससे हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुनकर याजक नियुक्त किया था कि वह इसराइल को परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा दे और धूप जलाने तथा बलि चढ़ाने में परमेश्वर के निर्देशों का पालन करे, क्योंकि उनकी बलियां प्रभु यीशु के बलिदान की ओर संकेत करती थी। प्रभु यीशु एक सिद्ध एवं निष्कलंक निर्दोष मेमना था, परंतु मलाकी के युग में याजक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे। वे रोगी, अंधे, लंगड़े, लूले पशुओं को लेकर बलि कर रहे थे। यह परमेश्वर की निंदा थी। अतः परमेश्वर कहता है कि वह उनके दशमांश घटा देगा और उन्हें सबके सामने तुच्छ और नीचा करेगा। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए मलाकी नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, लिखा है क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं। कुछ विचारकों के अनुसार पिता अब्राहम के विषय में कहा गया है, क्योंकि अगले पद में इसराइल और यहूदा की चर्चा की गई है। परंतु मेरे विचार में अगला प्रश्न स्पष्ट करता है कि मलाकी परमेश्वर को पिता कह रहा है। क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? मेरे मित्रों, वह स्पष्ट भी करता है कि परमेश्वर हमारा पिता कैसे है। उसने हमें सृजा, इसलिए वह हमारा पिता है, वह हमारा सृष्टि करता है। परंतु मनुष्य ने इस संबंध को तोड़ दिया। आदम परमेश्वर का पुत्र कहलाता था, परंतु उसके पतन के बाद उसका पुत्र उसके स्वरूप में उत्पन्न हुआ, परमेश्वर के स्वरूप में नहीं। वह अपने पिता आदम के भ्रष्ट स्वभाव में जन्मा। अतः इसराइल जाति में हम परमेश्वर को किसी एक इसराइली को अपना पुत्र कहते नहीं सुनते हैं। वह संपूर्ण इसराइल जाति को अपना पुत्र कहता है। जी हाँ, पुराने नियम में परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य को अपना पुत्र नहीं कहा है, यहाँ तक कि मूसा और दाऊद जैसे महात्माओं को भी परमेश्वर ने अपना दास कहा, पुत्र नहीं। मनुष्य परमेश्वर का पुत्र केवल प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा ही बनता है। अतः परमेश्वर मानव जाति का पिता है, अर्थात वह हमारा सृजनहार है। आज हमारे समाज में इस पर बहुत बल दिया जाता है और मेरे विचार में यह उचित भी है। एक बार कोई उदार रहित मनुष्य टीवी पर कह रहा था कि हम सब मनुष्य हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की सुधि लेना चाहिए। वह सही कहता था, मैं जो मान सम्मान चाहता हूं, जो अधिकार चाहता हूं, मुझे आपको भी देना चाहिए, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। मैं मनुष्य हूं तो आप भी मनुष्य हैं। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम सब परमेश्वर की सृष्टि हैं। आगे कहता है, हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं। वे एक चुनी हुई जाति थे, परंतु परमेश्वर की वाचा तोड़कर एक दूसरे से विश्वासघात करते थे। उनका संबंध परमेश्वर के साथ उचित नहीं था, इस कारण उसके सामाजिक संबंध भी अच्छे नहीं थे। मेरे मित्रों, आज भी ऐसा ही है। अनेक उद्धार रहित मनुष्यों में भरोसा नहीं किया जा सकता है, और अनेक वर्ष कलीसियाई सेवा के बाद आज मैं कह सकता हूं कि मैं अनेक मसीही जनों पर भी विश्वास नहीं कर सकता। मुझे उनमें लेश मात्र भी भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे विश्वासघाती हैं। कलीसिया में कलह, परस्पर खून के प्यासे, अगुओं से बढ़कर प्रभु यीशु के प्रयोजन को हानि पहुंचाने वाली बात अन्य कोई नहीं है। कलीसिया कितनी भी सुसमाचार आधारित हो, ऐसी दशा में उनकी गवाही शून्य हो जाती है। आइए हम आगे देखते हैं, तलाक और पुनर्विवाह का पाप। मलाकी नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, यहूदा ने विश्वासघात किया है और इसराइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। मेरे मित्रों, अब वह विषय पारक पर बात करता है। यहूदा ने विश्वासघात किया है और इसराइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है। यहूदा का अर्थ है यहूदा का गोत्र, और इसराइल का अर्थ है अन्य सब गोत्र। यरूशलेम उनकी राजधानी थी। लिखा है, इसराइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है। परमेश्वर कहता है कि वे एक दूसरे के साथ विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ रहे थे। वे परमेश्वर की पवित्रता को कलंकित कर रहे थे। परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता से प्रेम रखता है। वह पाप को सहन नहीं करता है, वह पाप से घृणा करता है। अब वह साफ साफ कहता है, आप देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 से 7 पद में। यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके। मेरे मित्रों, यहूदा वासियों ने बंधुआई से लौटने के बाद वहां परिवेश में अन्य जाति सुंदरियों को देखा और अपनी अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे विवाह किया। इस प्रकार उनमें मूर्ति पूजा प्रवेश कर गई। संपूर्ण बाइबल में हमें यही देखने को मिलता है। मेरे विचार में उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 से 7 पद में यही परिदृश्य है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया। कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे, जिन्होंने मनुष्य की स्त्रियों से विवाह करके दानव उत्पन्न किए, परंतु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। प्रभु यीशु ने कहा है कि स्वर्गदूत विवाह नहीं करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 30 पद में हम इसे पाते हैं। इसकी अपेक्षा यह सेत की धर्मी वंशावली कैन की पापी वंशावली से विवाह कर रही थी। यही स्थिति इसराइल की भी थी जब वे प्रतिज्ञा के देश के निकट पहुंच रहे थे। मोआब के राजा ने बिलाम को बहुत पैसा देकर बुलाया कि वह इसराइल को श्राप दे, क्योंकि वे इसराइल से अत्यंत भयभीत थे। परंतु परमेश्वर ने बिलाम को अनुमति नहीं दी कि वह इसराइल को श्राप दे, अतः उसने मोआब के राजा को बहुत ही घृष्ट सुझाव दिया, दुष्टता का सुझाव दिया। उसने कहा कि वह मोआबी लड़कियों को इसराइल के शिविर में भेजना आरंभ करे, जिससे कि इसराइली उनसे विवाह कर लें, और इस प्रकार उनमें मूर्ति पूजा प्रवेश कर गई। मेरे मित्रों, इसराइल राज्य के विभाजन के पश्चात फिने के प्रदेश की मूर्ति पूजा उत्तरी राज्य में प्रवेश कर गई, क्योंकि राजा आहाब ने इजेबेल से विवाह किया था जो सोर और सैदा के पुजारी एवं राजा इतबाल की पुत्री थी। अब मलाकी के युग में भी ऐसा ही हो रहा था। नहमिया की पुस्तक से हमें पता चलता है कि जब इसराइली स्वदेश लौटे तब उनके पड़ोस में सब अन्य जातियां वास कर रही थी। अब कोई इसराइली युवक को उनकी लड़की अच्छी लगती तो वह अपनी इसराइली पत्नी को तलाक देकर उससे विवाह कर लेता था। मेरे मित्रों, आज हमारे युग में भी ऐसा ही हो रहा है। मैं आरंभ ही से कहता आ रहा हूं कि एक विश्वासी और एक अविश्वासी को विवाह नहीं करना चाहिए। जो युवा परमेश्वर के इस निर्देश का पालन न करे वह निश्चय ही परेशानी मोल ले रहा है, क्योंकि उसके जीवन में कठिनाइयां आएंगी। आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देखा होगा जो परिवार परमेश्वर की निकटता में नहीं है कितने परेशानियों में घिरे हैं। मलाकी आगे कहता है 2 अध्याय उसके 12 पद में, जो पुरुष ऐसा काम करे उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर, उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। कहता है जो पुरुष ऐसा काम करे उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर, उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। मेरे प्रियो, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, उसे दंड मिलेगा। और जो परमेश्वर की उपासना भी करे परंतु पाप का जीवन जिए तो वह भी नहीं बचेगा। परमेश्वर की सच्ची संतान पाप में पड़ी नहीं रहेगी। उड़ाव पुत्र सुअरों के बाड़े में नहीं रह पाया था। इसके उदाहरण को हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 पद में देखते हैं कि वह निर्णय लेता है, मैं अपने पिता के घर लौट जाऊंगा क्योंकि वह पुत्र था सुअर नहीं। जी हां, मुझे एक कलीसिया में सेवा करने का अवसर मिला और कलीसिया के पदाधिकारी ने विस्मयकारी पत्र भी लिखा कि वह व्यभिचार के जीवन से उभर नहीं पा रहा था। परंतु सच यह है कि परमेश्वर का पुत्र गंदगी में नहीं रह पाएगा। यदि आज आप भी पापमय जीवन जी रहे हैं तो आज ही आप परमेश्वर की ओर लौट आइए। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप अवश्य ही लौटेंगे, यदि नहीं है तो आप उसी कीचड़ में पड़े रहेंगे। मलाकी आगे कहता है 2 अध्याय के 13 पद में, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहां तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? जिन्होंने अपनी पत्नियों के तलाक देकर अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया था उनकी पत्नियां वेदी पर रोते हुए आई। परमेश्वर कहता है कि उसने उनकी आह सुनी और जब उन्होंने उसी वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाई जिस पर उनकी पत्नियों के आंसू गिरे थे तो उसने उनकी भेंट पर ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, जिस कलीसियाई पदाधिकारी का मैंने ऊपर में उल्लेख किया था उसके भले कामों पर परमेश्वर का ध्यान नहीं जा रहा था, उसके लिए उचित है कि वह गुमनाम हो जाए। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। वह आपके पाखंड को जानता है और आपकी सेवा ग्रहण नहीं करेगा। अब ये लोग अनजान बनकर अपनी स्वांगपूर्ण निर्दोषिता को प्रकट करते हुए पूछते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्यों? मलाकी 2 उसके 14 पद में लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और व्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। ध्यान दीजिए, कहता है, तुम पूछते हो ऐसा क्यों? परमेश्वर ने उनकी भेंट को अस्वीकार करने की बात कही तो उन्होंने पूछा क्यों? तो मलाकी अति स्पष्ट रूप से उन्हें उत्तर देता है कि वे उसे गलत न समझे। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तेरे और तेरी जवानी की पत्नी का गवाह है, तूने उसके साथ निर्दयता का व्यवहार किया है। अपनी युवावस्था में तो उसने स्वजाति स्त्री से विवाह किया था, परंतु अब वह एक अन्य जाति स्त्री के संबंध में आ गया है और वह उससे अपनाना चाहता है। आगे लिखा है, तेरी जवानी की संगनी और व्याही हुई स्त्री। मेरे प्रियो, इसने याजक की उपस्थिति में परमेश्वर को साक्षी मानकर विवाह की शपथ ली थी कि उसके साथ निष्ठापूर्वक जीवन निभाएगा और सदा बना रहेगा। अगला पद कठिन है, परंतु मेरे विचार में डॉक्टर चार्ल्स फेनवर की व्याख्या उचित है कि मलाकी तलाक के विषय में कह रहा है और परमेश्वर द्वारा स्थापित विवाह के संस्कार का संदर्भ दे रहा है। आइए हम पढ़ते हैं मलाकी 2:15 में लिखा है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। कहता है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? यह आदम और हवा की रचना के संदर्भ में है कि वे दोनों आधे आधे एक थे, संतान में आधा पिता और आधी माता होते हैं। कहता है, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। मेरे प्रियो, देखिए, पत्नी को आत्मिकता और सांसारिकता में परिवार के लिए पति के समान होना है। जिस परिवार में तलाक हुआ हो या बहुविवाह हुआ हो, एक से अधिक विवाह हुआ हो, वह परिवार बच्चों के पालन पोषण के लिए उचित नहीं है। मेरी बहनों, यदि आप विश्वासी हैं तो अविश्वासी से विवाह ना करें, क्योंकि आपको उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, और यदि उसका विश्वास आपके विश्वास से अलग है तो आपको पारिवारिक जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा। यदि आप पुरुष हैं तो अपनी मंगेतर को विवाह से पूर्व विश्वास में जीत लें, क्योंकि यही सबसे अच्छा समय होता है, अन्यथा आप गहन समस्या में पड़ जाएंगे, कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। लिखा है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। मेरे प्रियो, मलाकी उन्हें चेतावनी दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अंतरजातीय विवाह के लिए मना किया था। आपको स्मरण होगा कि नहमिया यरूशलेम के शहर पनाह बनवाने के बाद मादी फारसी राजा के महल में पुनः लौट गया था, क्योंकि वह उसका पिलाने हारा था। वहां कुछ दिन सेवा करके वह पुनः अवकाश लेकर यरूशलेम को आता है और देखता है कि अमोनी तोबिया, जो परमेश्वर का विरोधी था, मंदिर के कक्ष में वास कर रहा था, क्योंकि महायाजक के पुत्र ने उसकी पुत्री से विवाह किया था और महायाजक ने उसके लिए मंदिर में रहने की व्यवस्था की थी। आप जानते हैं नहमिया ने क्या किया? नहमिया ने उसका सब सामान मंदिर से बाहर फिकवा दिया। आप कहेंगे कि ऐसा व्यवहार तो बहुत ही असभ्य था। अवश्य था, परंतु मंदिर के शोधन के लिए आवश्यक था। सच तो यह है कि नहमिया ने अपने जाति भाइयों के साथ भी अत्यधिक कठोरता का व्यवहार किया था, क्योंकि उन्होंने अश्दोद की कन्याओं से विवाह किया था। नहमिया स्वयं कहता है, नहमिया के पुस्तक 13 अध्याय के 25 पद में, तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलवाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ विवाह में ना देंगे और ना अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां विवाह में लेंगे, और अंतर जातीय विवाह के विनाश का स्मरण कराया। आज नहमिया जैसे कलीसियाई सदस्यों की कैसी आवश्यकता है। मेरे श्रोता मित्रों, आज यह देखकर बहुत दुख होता है कि हमारी बहुत सी बहनें इस समय अविश्वासियों के साथ विवाह करके अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं और कष्ट और कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। हमारे बहुत सारे भाई अविश्वासी से विवाह करके अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि विश्वासी अविश्वासी के जुए में न जूते। मेरे प्रिय मित्र, आज आपके लिए अवसर है कि अपने जीवन के लिए एक सही जीवन साथी का चुनाव करें। वचन कहता है कि आप अपने जीवन साथी को धोखा नहीं दे सकते हैं, विश्वासघात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे, यह उसका है, इसलिए आपको उसके साथ जीवन निर्वाह करना है। मेरे प्रियो, आइए आज अपने जीवन में एक सही निर्णय लें और सही निर्णय के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, ताकि हम अपने जीवन में महान शांति और आनंद को प्राप्त करें। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
डूबो को बचाने का तेरा वादा है मुंजी, डूबो को बचाने का तेरा वादा है मुंजी, फिर क्यों नहीं आता नैया को बचाने, फिर क्यों नहीं आता मेरी नैया को बचाने, भटके हुए राही को सही राह दिखाने, एक बार मसीह मुझे तो जरा दिल में जगा दे।